ए नबी इनसे पूछो, क्या हम अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारें जो ना हमें नफा दे सकते हैं और ना नुकसान, जबकि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा चुका, तो क्या अब हम उल्टे पांव फिर जाएं? सोचिए जरा अपने ऊपर लें, अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया तो क्या अब मैं उल्टे पांव फिर जाऊं? कैसे? इस मिसाल पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्या हम अपना हाल उस शख्स का सा कर ले जिसे शैतानों ने सहरा में भटका दिया हो और वो हैरान और सरगर्दा फिर रहा हो? ये कौन है? किताब से दूर, नफ्स के पीछे कहीं किसी गुना में पड़ गया, बुरी सोहबत पड़ गई। ऐसे जैसे शैतान किसी को वरगलाते हैं, इस तरह उसके बुरे दोस्त, उसके साथी उसको गलत चीजों की तरफ बुलाते हैं, हालांकि इसके साथी इसको पुकार रहे हों कि इधर आ जाओ, ये सीधी राह मौजूद है। ये कौन है? आप जैसे प्यारे कुरान पढ़ने वाले दोस्त, कोई ऐसी सिस्टर, कोई दोस्त, कोई बहन आपकी कि जो किसी गलत कंपनी में पड़ चुकी है, होश ही नहीं है, वो तो बिल्कुल शैतानों के हाथ में आ गई, लेकिन आप उसको अभी तक पुकार रहे, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, आपका मेरा काम ये है। और हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह की रहनुमाई है, इसी की तरफ से हमें ये हुक्म मिला है कि मालिके कायनात के आगे सरे इताद खम कर दो। ये है हिदायत का पारा, आपने नोट किया पूरे पारे में हिदायत, और ये कुरान का हिस्सा कि जब सबसे ज्यादा हिदायत के मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए, कभी अलहुदा कहा, कभी हुदन कहा, और कहीं कुछ, क्या पता चला कि हिदायत जिसको चाहिए उसको किताब से जुड़ना पड़ेगा। हकीकत में सही रहनुमाई तो सिर्फ अल्लाह की रहनुमाई है, इसी की तरफ से हमें हुक्म मिला है कि मालिके कायनात के आगे सरे इताद खम कर दो, नमाज कायम करो और इसकी नाफरमानी से बचो, इसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। बस इसी को याद रख ले, इलैही ही तो शरू, दुनिया तो गुजर जाएगी, वहां जाकर क्या बनेगा? आज अगर मेरा सांस उखड़ जाए, मेरे पास है क्या? चंद मिनट में हमारा नाम मैयत में बदल सकता, चंद दिन में हम है से थे पे चले जाएंगे, फिर कोई ये नहीं कहेगा आप हैं, वो कहेंगे वो थी। और आप कभी अल्लाह ना करे किसी के मरने की खबर सुने, कभी किसी ने कहा कि फातिमा को इधर लाओ, फातिमा को कब नहलाना है, फातिमा को कब पहनाना है, क्या कहते हैं? मैयत, मैयत को कफनाना है, बोला फौत हो गए, आखिरी नाम मेरा हल है हमारा उस वक्त लिया जाता है जब लोग हमारी मौत की खबर एक दूसरे को देते हैं। आपको पता है फातिमा का इंतकाल हो गया, आपको पता है सुमैया चली गई, बस ये आखिरी पुकार है। इसके बाद लोग ये नहीं फोन करके पूछते अच्छा फातिमा को कब दफनाना है, फातिमा का जनाजा किस मस्जिद में, लोग कहेंगे अच्छा जी मैयत को कब दफनाना है, मैयत मैयत मैयत। तो मेरा आपका नाम जिसने मैं इतना गुमान में डाल दिया, इसी नाम को जमा बड़ा करने के लिए हमने कई जगह अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, ये नाम सबसे पहले हमसे दूर हो जाएगा। वहुअल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ध बिल हक, अल्लाह हम सबको जिंदगी का मकसद याद दिलाते हैं, और वो क्या है? वही है जिसने आसमानों जमीन को बरहक पैदा किया, बरहक के मकसद के साथ पैदा किया, हम इस दुनिया में खेलकूद के लिए नहीं आए, बरहक है ये कायनात। जिस दिन वो कहेगा कि हशर हो जाए, उस दिन वो हो जाएगा, इसका इरशाद ऐन हक है। और वो दिन कैसा दिन होगा? यौम युनफखु फिस्सूर, जिस दिन सूर में फूका जाएगा, और उस दिन बादशाही उसी की होगी, वो गैब और शहादत हर चीज का आलिम और दाना व बाखबर है। सोचिए जरा जिस दिन हम अल्लाह के पास पहुंचेंगे उस दिन क्या होगा? उस दिन किसी का कोई हुक्म नहीं चलेगा, सब काम उस दिन अल्लाह के हुक्म से होंगे, तो आज क्यों ना हम उसका हुक्म मान लें। इसके बाद अब अगली आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुशाहिदा हक है। बाज लोगों ने कहा यह तलाश हक है, ये गलत है। हजरत इब्राहिम कौन थे, कहाँ पैदा हुए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अभी इनके बचपन का किस्सा है, पूरे कुरान में डिफरेंट इनके एज के ग्रुप्स आएंगे, वहां उसके मुताबिक बात करेंगे। अर्ली टीन एज भी नहीं कह लीजिए, 8-9 साल का बच्चा, इर्द गिर्द का पूरा माहौल प्लूटेड है, शिर्क आम है। उर मुकाम के शहर में पैदा हुए, उस दौर में उर को हब ऑफ द सिविलाइजेशन कहते थे, और मैं अगर आसानी से कह दूं कि और उस दौर का यूएसए था, जो आज यूएसए को इज्जत हासिल है, कनाडा को हासिल है, या आप यूरोप को नाम ले लीजिए जहां से मुख्तलिफ चीजें उठती हैं, और इतना ज्यादा दौलतमंद मुल्क था, लोग खाते पीते थे, बुतों को पूजते थे, हजरत इब्राहिम के अपने वालिद बुत बनाते और बेचते थे। लेकिन जब फितरत की अल्लाह हिफाजत करता है जिस पे एक बच्चा पैदा होता है, तो बुरे से बुरे माहौल ने इब्राहिम का कुछ नहीं बिगाड़ा। پہلے تو میں دعا کروں گی کہ اللہ ہمارے وہ بچے جو شرک اور الہاد اور کفر کے ماحول میں پلے اور پیدا ہوئے تو ان کے بھی دین کی حفاظت ایسی کر جیسے ابراہیم کے دین کی کی. جیسے ابراہیم کو کھوج لگ گئی کہ میں اپنے رب کو پالوں, اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہ کھوج لگ جائے, کبھی ماحول کا رنگ ان پر نہ چڑھے اور وہ غلط چیزوں میں نہ آئے. اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم نے کیسے یہ مشاہدہ کیا, سارا پڑھتے ہیں پھر اس میں سے چند چیزیں انشاءاللہ جو ہمارے اس وقت عمل کی اس کو ہم دیکھیں گے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو جب کہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے, میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. کیا ابراہیم کا یہ پوچھنا بدتمیزی نہیں تھا؟ بیٹا باپ سے پوچھتا ہے ابو آپ کیا کماتے ہیں, ابو آپ کا سورس آف انکم کیا, یہ بدتمیزی نہیں ہے؟ بدتمیزی نہیں ہے. انداز دیکھیے کتنا پیار ہے ابراہیم کے لمحے میں. تو بعض دفعہ اولادوں کو ماں باپ سے پہلے ہدایت مل جاتی ہے, تو اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو اسے برا نہیں ماننا چاہیے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے, اور اسی لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. چنانچہ جب رات اس پر تاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب, مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا. پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب, یہ سب سے بڑا ہے, مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھے اے برادران قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک بناتے ہو. ان کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی, اور حضرت ابراہیم نے رب کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں دیکھا, نوٹ کیجئے گا نقطہ, آسمان پہ دیکھا. نہ تو ابراہیم نے پہاڑوں کو دیکھا نہ سمندر کو دیکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ رب اوپر ہے, رب آسمان پہ. جنہوں نے زمین پہ خدا بنائے انہوں نے خداؤں کو رسوا بھی کر دیا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر چمکتی ہوئی چیز کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہوئے, اور آخر میں پھر کیا کہیں گے, میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے, اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہے اصل بات. یعنی تم سورج کو پوچھتے ہو, تم چاند کو پوچھتے ہو, میں سورج اور چاند کے رب کو پوچھتا ہوں. یہ چیزیں اتنی بڑی ہیں تو ان کو بنانے والا کیسا ہوگا. اور آج آپ دیکھیے کہ سائنس نے جو راز کھولے آسمانوں کے اور سورج کے اور چاند کے, ان کو دیکھ کر ایک دفعہ تو دل ہلتا ہی ہے نا. اگر ہمارے بچے جو سائنس پڑھتے ہیں اور جو خاص طور پہ اس طرح کے سبجیکٹس لے رہے ہیں, اگر ان کے دلوں میں اللہ کی محبت آ چکی اور یہ سب کچھ ابراہیم کو پتا چلا, ان کو پتا, تو کیا وہ اپنے ٹیچرز کو غور و فکر پہ مجبور نہ کر دیں کہ دیکھو یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت ہے. یہ تبلیغ کا وہ بے ضرر قسم کا نقطہ ہے جس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ لک ایٹ دا مون, لک ایٹ دا اسکائی, لک ایٹ دا اوشن, یہ سب کس نے پیدا کیا؟ تو یکسو ہوں گے تو پھر ہوگا. جو ہی ابراہیم نے اپنے ایمان کا اقرار کیا, ذرا قوم کا حال دیکھ لیجئے, اس کی قوم اسے جھگڑنے لگی. جب سچا ایمان آپ کے اندر آئے گا نا, یاد رکھیے آپ کے قریبی بھی آپ سے جھگڑیں گے, اور قرآن کے سفر کے ساتھ یہ مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں. جس دن آپ جا کے کہیں گے اب بس میں قرآن سے جڑ گئی, پھر دیکھیے جو آپ کو وہی باتیں کہ بلا تخاب ہونا لو متلائیں, ایسی ایسی ملامتیں پڑیں گی کہ آپ خوف زدہ ہو کے چھوڑ دیں گے کہ پتہ نہیں میں ٹو مچ تو نہیں ہو گئی, میں نے کوئی اپنے آپ کو زیادہ ہی بہت ان تو نہیں کر لیا دین میں. تو قومیں جھگڑتی ہیں جب لوگوں کو رب مل جاتا ہے. فرمایا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ یہ ہے جواب میرا اور آپ کا. کبھی کوئی مجھے اور آپ کو اسلام پہ عمل کرنے کے معاملے میں برا بھلا کہیں تو یہی جواب دیں. کیا کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو؟ کہ میں اللہ کی چھوڑ کر آپ کی مان لوں؟ واخاف ما تشرکون بھی ہی, حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی, اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے, میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ ہوگے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ اس کو کہتے ہیں کانفیڈینس. जब तुम मेरे रब से नहीं डरते तो मैं तुम्हारी देवियों से क्यों डरूं? क्योंकि मुशरिकाना कल्चर में खौफ बहुत होता है। जब कोई अच्छा काम करे और उनके बुतों को बुरा कर, वो कहेंगे देखना अब इनकी मार पड़ेगी, अब इनकी नहुसत पड़ेगी, फलां देवी तुमसे नाराज होगी, देखना तुम्हारे घर बीमारियां आ जाएंगी। तो मुशरिक खौफजदा है और मोमिन अमन वाला है, सुकून वाला है। इसीलिए यही बात कहते हैं कि तुम नहीं डरते तो मैं क्यों डरूं, जबकि तुम अल्लाह के साथ इन चीजों को खुदाई में शरीक बनाते हुए नहीं डरते जिनके लिए उसने तुमको की सनत नाजिल नहीं की। हम दोनों फरीकों में से कौन ज्यादा बेखौफी और इत्मीनान का मुस्तहिक है? बताओ अगर तुम कुछ इल्म रखते हो, हकीकत में दामन इन्हीं के लिए है और राह रास पर वही है जो ईमान लाए और जिन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ आलूदा नहीं किया। इसको हाईलाइट करेंगे, यहां जुल्म से मुराद शिर्क है। इतना बड़ा गुनाह है शिर्क कि अल्लाह ताला ने उसको जुल्म करार दिया, क्योंकि हम अल्लाह का हक किसी और को देने लगते हैं। ये थी हमारी वो हुज्जत जो हमने इब्राहिम को इनकी कौम के मुकाबले में अता की, और हम जिसे चाहते हैं बुलंद मर्तबे अता करते हैं। हक यह है कि तुम्हारा रब नहायत दाना व अलीम है। फिर हमने इब्राहिम को इसहाक और याकूब जैसी औलाद अता की, हर एक को राह रास दिखाई, वही राह रास जो इससे पहले नूह को दिखाई गई थी, और इसी की नस्ल से हमने दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा और हारून को हिदायत बख्शी। इसी तरह हम नेकूकारों को इनकी नेकी का बदला देते हैं। इसी की औलाद से जकरिया और याहिया और ईसा और इलियास को रहयाब किया, हर एक इनमें से सवाले था। इसी के खानदान से इस्माइल, अलयसा और यूनुस और लूत को आरास्ता किया, इनमें से हर एक को हमने तमाम दुनिया पर फजीलत बख्शी। नीज इनके आबा अजदाद और इनकी औलाद और इनके भाई बंदों में से बहुतों को हमने नवाजा और इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया और सीधे रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई की। ये अल्लाह की हिदायत है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है। कितने नबियों के नाम लिए अल्लाह ने? 18 नबियों का नाम लिया और उनके चुनाव की बात की। क्या चुनाव था? अल्लाह के दीन के काम के लिए चुनेंगे। आज किसी को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब तो मिल जाए, पूरी दुनिया में मैसेज भेजने को दिल जाएगा, तुम्हें पता है मेरे बेटे को वहां जॉब मिल गई, और तुम्हें पता है आज देखिए किसी को सदर ओबामा का सेक्रेटरी बनने का रुतबा मिल जाए तो कहां लोग पहुंचेंगे उस खबर को लेकर। ये तो दुनिया की चार दिन की बातें है ना। जिसको अल्लाह के दीन की जॉब मिल जाए उसकी शान क्या है? अल्लाह ने खास तौर पे नबियों का कहा वज तबई ना हम, चुना भी वहदई ना हम, और उनको हिदायत भी दी। तो क्या हम चाहते हैं कि हम चुने जाए? तो फिर अल्लाह से चुपके से दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह जैसे तूने इन नबियों को चुना हमें भी चुन ले, हमारी नस्लों को चुन ले, हमारे बच्चों को चुन ले, हमारे बड़ों को चुन ले, हमारी औरतों को, हमारी बेटियों को चुन ले। और जब अल्लाह चुनता है तो यकीन करें अल्लाह को पूछना कोई नहीं पड़ता, राजा को भी अल्लाह चुन लेता है। मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आगे हम पढ़ेंगे, आग लेने गए थे, पैगंबरी मिल गई, तड़प आपकी मेरी होगी। जितना तड़प कर इस रमजान में आप अपने लिए दुआएं करेंगे ना, देखिएगा रमजान के बाद आपके लिए नेकियों के दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर आप कहेंगे चलो कितने पारे रह गए, कितने रोजे रह गए, तो बस इसी पे सिलसिला रुक जाएगा, और अल्लाह ताला हमारा ये सिलसिला कभी खत्म ना करे, चलते ही जाएं। और अब आप आगे नोट कीजिएगा कि जब कोई चुना गया तो हम कहते हैं जब कोई चुना जाता है तो बस उसकी तो सारी बातें पूरी हो जाती है। फरमाया नहीं, लेकिन अगर कहीं इन लोगों ने शिर्क किया होता तो इनका सब किया कराया गारत हो जाता। यहां नोट कीजिए जुमला, शिर्क इतना ज्यादा फ्लेमेबल है कि अंबिया कराम की सारी जिंदगी की नेकियां जाया हो जाती हैं अगर वो शिर्क करते। तो मैं और आप और आम अनपढ़ किस्म के लोग जब कब्रों पे जाकर माथे टेकते हैं और इस तरह की शिरकिया बातें करते हैं तो उनकी नेकियों के साथ क्या होता होगा? देखिए कितनी भी बड़ी चीज हो एक चिंगारी से आग लग जाती है। नेकियों की कसरत पे नहीं मान करना, इल्म हासिल करके देखना है कि कहीं जानते या अनजाने में हमसे कोई शिर्क तो नहीं हो रहे। और हदीस में आता है कि शिर्क इतना खफीफ है, छुपा हुआ है, काली रात में स्याह पहाड़ पर काली चींटी जैसे नजर नहीं आती, इस तरह शिर्क भी नजर नहीं आता। हम खुद से पूछें और इस पे गहरा इल्म लेने की जरूरत है, क्योंकि ये फर्स्ट शर्त है जन्नत में जाने की कि शिर्क ना किया हो। लोगों का डर भी शिर्क की एक किस्म है, रियाकारी भी शिर्क है, दिखावा भी शिर्क है, नमाज ना पढ़ना भी शिर्क है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें छोटे बड़े हर किस्म के शिर्क से पाक कर दे। फरमाया उलाइकल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा, ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म और नबुवत अता की थी। अब अगर ये लोग इसको मानने से इनकार करते हैं तो परवाह नहीं, हमने कुछ और लोगों को ये नेमत सौंप दी है जो इसके मुनकर नहीं। ए नबी, वही लोग इसकी तरफ से हिदायत याफ्ता थे, इन्हीं के रास्ते पर चलो और कह दो कि मैं इस तबलीग और हिदायत के काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं। ये तो एक आम नसीहत है तमाम दुनिया के लिए। ये आज भी एक सच्चे दाई दीन का स्लोगन होना चाहिए कि ला असअलुकुम अलैहि अजरन, मुझे इस काम पर तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और तुम दे भी कह सकते हो, किसके पास कुछ है कि किसी को दीन की बात बताने का कोई मुआवजा दे सके। अल्लाह के नबी लोगों की जेबों की तरफ नहीं देखते थे, वो बेनियाज थे, बल्कि क्या है, इन हुवा इल्ला ज़िक्रा लिल आलमीन। ये नसीहत है आम लोगों के लिए, यानी इस किताब को पेड जॉब्स के साथ आम नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल है। जहां एक एक मिनट गिना जाए, एक एक घंटा काउंट हो, वहां फिर वो खलूस और वो इतमाद नहीं आता। तो अल्लाह के नबी जितने भी गुजरे, 18 नबियों के यहां नाम है, टोटल 25 अंबिया, सब की एक ही खूबी थी कि वो इस काम के बदले में कुछ तलब नहीं करते थे। और जब लोग ऐसे बेलौस लोगों को काम करता देखते हैं तो वो खुद सोच में पड़ जाते हैं कि इनको क्या हुआ, ये बच्चों को क्यों रुला के लेकर आते हैं, इनको क्या मसला है। फिर समझ आती है कि ये बहुत अकलमंद लोग हैं, ये यहाँ अपने बच्चों को थोड़ा सा रुला लेते हैं लेकिन ये अगली जिंदगी की खुशियां पाने के लिए आते हैं, ये जन्नत को पाने के लिए आते हैं। अल्लाह के दीन के काम वॉलंटियरली ही होते हैं, ये काम वॉलंटियर समझते हैं ना क्या होता है, दिल की खुशी से करना, मजबूरी से कोई नहीं करवा सकता ये काम किसी से। आज दुआ कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा के हर बंदे को ये तलब लग जाए कि अल्लाह मुझे अपना काम करने वाला बना दे। शिर्क कब होता है, सवाल पैदा होता है कि लोग शिर्क में क्यों मुब्तला होते हैं, जब वो अल्लाह की कदर नहीं करते, जब उनको अल्लाह की अथॉरिटी का नहीं पता। इसलिए पहली दफा आप हमारे सबक में आ रहे हैं, 3 दफा ये पूरे कुरान में आयत आती है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, और लोगों ने अल्लाह की वो कदर नहीं की जो कि उसकी कदर का हक था। राइट और रॉन्ग, 3 सेकंड तक यहां गौर करते हैं हम सब, क्या मैंने अल्लाह की उतनी कदर की जितनी कदर का हक था, क्या मैंने अल्लाह का सही अंदाजा लगाया। अगर मैंने अल्लाह ताला के 99 नेम्स और एट्रीब्यूट्स को ही नहीं समझा अभी तक, तो मुझे अल्लाह का अंदाजा हो भी नहीं सकता। हमने क्या सोचा है, अल्लाह वो जिसके सामने मस्जिद में जाकर सजदा करते हैं वो अल्लाह है, और बाकी नफा बैंकों के पास, नुकसान खानदान के पास, इज्जत लोगों के पास, शोहरत बड़े लोगों के पास, सारी चीजें दुनिया वालों के हाथों में देकर फिर नमाज का वक्त आता है जाके माथा टेक आते हैं, तो फिर अल्लाह की कदर नहीं की। जिस दिन अल्लाह की कदर हमारे दिल में आ जाएगी, अल्लाह के दीन की भी कदर होगी, अल्लाह की किताब की भी कदर होगी। कैसे पता चलता है कि मैं अल्लाह की कदर है, इसका क्राइटेरिया अल्लाह की किताब की कितनी कदर है, अल्लाह के दीन की कितनी कदर है, अल्लाह के कहे हुए हुक्मों की कितनी कदर है। तो हर बंदा अपना रास्ता खुद जानता है। फरमाया जब के कहा, अब यहां उनकी नाकदरी वाला एक जुमला, इस कालुमान सल्लल्लाहु अलैहि बशर मिन शयिन, जब कहा कि अल्लाह ने किसी बशर पर कुछ नाजिल नहीं किया, इनसे पूछो फिर वो किताब जिसे मूसा अलैहिस्सलाम लाए थे, जो तमाम इंसानों के लिए रोशनी और हिदायत थी, जिसे तुम पारा पारा करके रखते हो, कुछ दिखाते हो कुछ छुपाते हो, जिसके जरिए से तुमको वो इल्म दिया गया जो ना तुम्हें हासिल था और ना तुम्हारे बाप दादा को, आखिर इसका नाजिल करने वाला कौन था। बस इतना कह दो कि अल्लाह, फिर इन्हें अपनी दलील बाजियों से खेलने के लिए छोड़ दो। वहां ज किताब हो मुबारक, हाईलाइट कर ले आयत 92 का शुरू, इसी किताब की तरह ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया, बड़ी खैर और बरकत वाली है। देखिए ये किताब जिस वक्त आपके मेरे हाथ में इसको छुएं, प्यार से इसको टच करें, अल्लाह ताला कहते हैं ये बरकत वाली किताब है। हकीकत ये है कि ये किताब जहां रखी गई वो बरकत बन गई जगह, मक्का में उतरी तो मक्का बरकत वाला, जिस फरिश्ते के जरिए आई तो वह रूहुल अमीन बन गए, और जिस नबी के ऊपर उतरी तो अल्लाह ने उसको आखिरी नबी कहकर बता दिया। और आज आप और मैं अगर इस किताब की बरकतें समेटना चाहते हैं ना, इसको हाथों में लेकर देखें, ऐसे आपके वक्त में बरकत है। जितना आप इस किताब के साथ वक्त गुजारेंगी वक्त में बरकत, आप इसमें माल लगाएंगी माल में बरकत, आप जवानी लगा दें आपकी जवानी में बरकत, सेहत लगा दे इसमें बरकत। ये जो एक गुमान है ना कि ये किताब बूढ़ों के पढ़ने वाली है, अब ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है अल्लाह के हुक्म से। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा हम तो सोचते हैं किताब पढ़ाने वाले बड़े बूढ़े से होते हैं, तो बूढ़े होंगे तो फिर आखिरी उम्र में पढ़ेंगे ना। आप जवानी में इस किताब को ले लें, आप कभी बूढ़े ही नहीं होंगे, पूरे यकीन से कह सकती हूँ। ये किताब इंसान की सारी कमियों को दूर कर देती है, और आज उम्मत मुस्लिमा इस किताब की बरकतों से महरूम है। बिलीव में इस किताब की अगर बरकत आज मैंने और आपने समेटी होती ना, तो हम लोगों से एड लेने वाले नहीं, उनको देने वाले होते। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये किताब दोबारा उम्मत मुस्लिमा के हाथों में आ रही है। हम पे भी बनी इसराइल की तरह वो एक दौर गुजरा है कि किताब को पीछे डाल दिया था, वराज हो रही है और वत्तबाउ शहवात, ख्वाहिशों में पड़ गए। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस किताब की बरकत से हम फायदा उठाएं। आपकी मेमोरी शार्प होगी, अभी तो आप सिर्फ सुन रहे हैं ना, अगर अल्लाह ने आपका नसीब अच्छा रखा और आप रमजान के बाद लफ्जी तर्जमे के किसी कोर्स में चले गए, बिलीव में आपकी मेमोरी वापस आ जाएगी, वो याददाश्त तेज होती है इस किताब से। मुझे कोई अभी सुबह ही कह रहा था आप लोगों में से कि आपके पास तो कोई नोट्स ही नहीं होते, आप कैसे बोलती हैं। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र करे मेरे पास नोट्स नहीं है, ये 6 घंटे का दौरा कुरान हो जाएगा एक बारा। मैं तो टच नहीं कर रही आजकल किसी किताब पढ़ने इल्म को कि मैं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगी, फिर मेरा दिल करता मैं दूं। मैंने उनको कहा कि आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से अपने आप को रोकती हूं, क्योंकि मेरे पास नए लोग हैं और नए लोगों को दिल करता है ऐसे उंडेल के दे दो कि जैसे प्यासे को दे दो। किसी के पास कोई प्यासा हो और आपके पास पानी हो, आपका दिल क्या करेगा, थोड़ा दो। मैंने कहा स्टूडेंट सामने बैठे उनके साथ दौरे कुरान में, मैं सिर्फ तर्जमा करवाऊं, मुझे पता है उनको बहुत कुछ मिल गया हुआ, लेकिन मैं सबर करके रोक के अपने आप को रखती हूँ। कोई बात नहीं, अभी ये पहला सफर है, अभी एक लेयर लगी, अभी इस पर बड़ी लेयर्स लगनी है, फिर आप देखिएगा जो आपका फहम और होगा। और ये आयतें कहाँ मिलती हैं, आप सिर्फ सादा अरबी का कुरान दे दें, मैं यही कुछ बोलूंगी जो आपके सामने इस तर्जमे वाले कुरान से बोल रही हूँ। ये तो आपके दिल पे लिखी जाती हैं, आपके दिमाग, आपकी आंखों में। क्या आपको अपने बच्चों के नाम देख देख के पढ़ने पड़ते हैं? क्या आपको अपने खानदानी वाकयात को सुन सुन के लिख लिख के रखना पड़ता है? तो जब ये किताब आपका ओढ़ना, आपका बिछाना, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका पैशन है, तो क्या आप नोट्स देख कर ये पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे? नहीं, ये किताब जब तक आपकी जिंदगी की किताब नहीं बनती। और ये लज्जत मैं आपको कहती हूँ लेकर देखें। वो कहते हैं ना कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत याचने। चुपके चुपके आप मुस्कुरा देते हैं, कुरान की कवायत याद आ जाती। चुपके चुपके आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, कुरान की कवायत याद आती। आप सारा दिन रहते लोगों में, लेकिन आप टच कर रहे होते हैं आयतों को, उधर हुई कुरान में ये, इधर हुई कुरान में। और अगर आपके साथ फिर कोई ऐसा हो शख्स जिसको भी आती है, तो कई ऐसे साथी हैं जिनके साथ हम आपस में सिर्फ कुरान की जुबान में बात करते हैं, खुद बोल के 6 जुमले बोलेंगे, बात नहीं समझा पाएंगे, एक जुमला के एक लफ्ज बोल देंगे तो वो समझेगा हाँ बात सच है। तो दुआ करते हैं ये हम सब अपने लिए कि अल्लाह इस किताब से दोस्ती हो जाए, अल्लाह ये किताब मेरी तन्हाइयों की साथी बन जाए, अल्लाह ये किताब मेरा ओढ़ना बिछोना बन जाए, और अल्लाह कुरान को मेरे साथ कब्र में भी नाखिल कर देना। अल्लाह मैं इस किताब के बगैर नहीं रह सकती, अल्लाह मेरी जिंदगी का एक भी दिन ऐसा ना हो कि ये किताब ना खुले, यानी ये किताब हमारी ऑक्सीजन बन जाए। वी कैंट लिव विदाउट दैट। अगर उम्मत मुस्लिमा का इस किताब से इतना प्यार हो जाए, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, सेलफोन लेते हो तो ले जाओ, ये किताब नहीं मैं छोड़ सकती, तुम मेरी गाड़ी की चाबी लेते हो ले जाओ, मैं ये किताब नहीं छोड़ सकती, यकीन करें आप इस किताब को ले लें, आपका रब आपको सब कुछ दे देगा। आज उम्मत ने ये किताब छोड़ी, सब दूसरों से मांगना पड़ रहा है, गरीब मुफलिस कलाश थर्ड वर्ल्ड में हम बन गए, हम मांगने वाले बन गए। लोगों को भी पता है मुस्लिम इज इक्वल टू पुअर, मुस्लिम वो जिसकी मदद करी जाती है। इन गरीब मुल्कों को दो अपने उतरे हुए लंडे के कपड़े, ये पहन पहन कर खुश हो जाएंगे। क्यों? किताब जो छोड़ी हुई है। आप और मैं इस किताब को पकड़े, ये किताब इज्जत दिलवाती है। और याद रखिए कि ये इज्जत फिर जब मिलती है तो फिर दुनिया हैरान हो जाती है, ये कहां से हो गया, ये कैसे हो गया। दुआ करें एक दफा हमारी जिंदगी में तो ऐसे आ जाए। और फरमाए मुसद्दिकुल लज़ी बैना यदै, और इस चीज की तस्दीक करती है जो इससे पहले आई थी, और इसीलिए नाजिल की गई कि इसके जरिए से तुम बस्तियों के इस मरकज यानी मक्का और इसकी इतराफ में रहने वालों को वॉर्न कर दो, इनको आगाह कर दो। जो लोग आखरत को मानते हैं वो इस किताब पर ईमान लाते हैं। खुद से पूछिए ईमान लाती हूँ? आइए जरा अगली आयतों में देखिए कि क्राइटेरियन क्या है। इनका हाल ये है कि अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं। चलिए खुद से पूछते हैं मेरी नमाजों का क्या हाल है, रमजान की नहीं, गैर रमजान की नमाजें। चलिए आजकल अच्छी हो गई है तो कीप इट, इंशाल्लाह हमने अपनी नमाजों को मेंटेन करना है। और इस शख्स से बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बुहतान खड़े या ये कहे कि मुझ पर वही आई, हालांकि इस पर कोई वही नाजिल न की गई हो, या जो अल्लाह की नाजिल करदा चीज के मुकाबले में कहे कि मैं भी ऐसी चीज नाजिल करके दिखा दूंगा। झूठी नबुवतों के दावे। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम। हम सुनेंगे बीच में सिर्फ, पढ़े ना, लेकिन आप इन आयतों का हुसन देखिएगा उसमें। और मुझे याद आ रहा है इन्हीं आयतों पर एक लेक्चर और मैं मर गया, बिल्कुल इब्तदाई दिनों के लेक्चर्स में था, अल्लाह ने उसको भी बड़ी बरकत दी, कई लोगों की हिदायत का जरिया बना। उसमें एक बुकलेट पढ़ के सुनाई थी और मैं मर गया, रियली बेनिफिशियल था। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम। काश तुम जालिमों को इस हालत में देखो जबकि वो सकराते मौत में डुबकियां खा रहे होते हैं और फरिश्ते हाथ बढ़ा बढ़ा कर कह रहे होते हैं कि लाओ निकाल लो अपनी जान। सोचिए अल्लाह को झुटलाना, अल्लाह की किताब को झुटलाने वाले की मौत कितनी सख्त है। कहा जा रहा है खुद अपनी जान निकालो, किसी को कहा जाए ना खुद को इंजेक्शन खुद लगाओ तो कितनी तकलीफ होगी। आज तुम्हें इन बातों की पादाश में जिल्लत का साहब दिया जाएगा जो तुम अल्लाह पर तोहमत रखकर नाहक बोला करते थे और उसके आयात के मुकाबले में सरकशी दिखाते थे। इसको हाईलाइट करें और 3 सेकंड तक सोचें, क्या मैं भी अल्लाह की आयतों के साथ सरकशी करती हूं? क्या अल्लाह की आयत सामने हो, अल्लाह का कोई हुक्म हो और मैं कहती हूं मैं इस पर अमल नहीं कर सकती, ये मेरे लिए तो नहीं हो सकता, इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी। तो अल्लाह ताला कहते हैं उनसे कहा जाएगा, क्या तुम अल्लाह की आयतों के साथ सरकशियां करते थे, उसको सुनकर सरों को पीछे खींचते थे, सर झटक देते थे? और अल्लाह फरमा लेगा, क्या कहेगा? लकद जीतुमूना फुरादा, लो आ गए ना तुम अकेले तन्हा, कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, जैसे तुमको पहली दफा पैदा किया था। दुनिया में तन्हा आए और तन्हा जाएंगे, जितनी मर्जी लोगों की फौज हमारे इर्द गिर्द जमा हो, हमारे फैंस, हमारे चाहने वाले, हमसे प्यार मोहब्बत करने वाले हो, कोई हमारे साथ कब्र में नहीं जाएगा। तन्हा दुनिया में आए, तन्हा वहां जाना पड़ेगा। इमेजिन करें क्या वो दिन होगा जिससे मेरी जान निकलेगी। कोई सबके लाख के साथ नहीं जाएंगे, फुलां फुलां। दुनिया में तो 4 लफ्ज बोल के असल लोग नाम लेते हैं, इतनी इज्जत इतनी ऑनर ये वो देते हैं, लेकिन अल्लाह के पास जाएंगे तो तन्हा। कमा खलकना कुम अव्वल मर व तरक तुम मा खव्वल ना कुम व रा जहूरी कुम, और तुम वो पीछे ही छोड़ आए जो हमने तुमको दुनिया में दिया था। वो किधर गया? गाड़ियां, बंगले, जेवर, चेक बॉक्स, कैश, क्रेडिट कार्ड्स किधर गए? सब पीछे छोड़ के आ गए। कभी किसी की कब्र में ये चीजें रखता देखा किसी को? और रख भी देंगे तो क्या होगा, किसी काम का नहीं है। वमा नरा माकुम शिफाकुम, और आज तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई सिफारिशी भी नहीं देखते। दुनिया में तो तुम्हारी सिफारिश चलती थी, लोग तुम्हारा नाम सुनकर लोगों को जॉब्स दे देते थे, लोग तुम्हारा नाम सुन के मुकदमे खत्म कर देते थे। आज किधर गए वो सारे मशीर और वजीर जो तुम्हारे जेरे असर थे? आज तो कोई भी नहीं है। अल्लज़ीन ज़अमतुम अन्नहुम फीकुम शुरका, जिनके बारे में तुम ये सोचते थे कि वो तुम्हारे काम बनाने में उनका हिस्सा है, कोई भी तो साथ नहीं है। लकद तकत्ता बैनकुम वदल्लनकुम मा कुंतुम तज़उमून, और तुम तो पीछे ही छोड़ आए, वो सब रिश्ते नाते टूट गए और वो सब तुमसे गुम हो गए जिनका तुम ज़ोम करते थे। आइए इन आयतों की तिलावत सुनते और आंखें बंद कर लें बेशक थोड़ी देर के लिए, और इमेजिन कीजिए कि जब किसी की मौत के वक्त ये कैफियत होती है तो मेरी मौत का वक्त आएगा तो क्या होगा।
والملائكة باسطوا أيديهم
سچ ہے نا جی، ہر ایک اپنی موت کو یاد کرے اور اس کو انشاءاللہ یہ بات سمجھ آئے گی. اور اس رب کو پہچاننے کے لیے اگر زندگی میں انسان اپنے آپ کو تیار کر لے تو اس کے لیے باخری رکوع ہے پارے کا، جس میں کچھ نشانیاں ہیں. ایک ایک پہ غور کرتے جائیں اور سنتے جائیں. ان اللہ فالق الحب والنوى، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے. فانا توفکون، پھر تم کدھر بہکائے چلے جا رہے ہو، یعنی تم کن سے متاثر ہو، تم کن سے امپریس ہو. پردے شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا، یہ سب اسی کے زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. سوچیے پوری دنیا کا کام کون چلا رہا ہے. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں، سچ ہے کہ نہیں؟ کوئی ہے چیز جو نہ نظر آئے ہمیں باہر، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپنے کی جگہ، یعنی تم سب اس دنیا میں ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے ہو، پھر تم اپنی قبروں میں سونپ دیے جاؤ گے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی حساسیت بھی جدا جدا ہے. جب یہ درخت پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور سے دیکھو. اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ہم میں سے کوئی اگر صرف افطاری بناتے وقت ان نعمتوں پہ غور کر لے. میں سوچتی ہوں کہ صرف ایک فروٹ چاٹ بناتے ہوئے اگر آپ اللہ کے بارے میں غور کریں تو آپ ہر دانے پہ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. انار کو دیکھیے، انگور کو دیکھیے، واٹر میلن کو دیکھیے، پھر آپ سٹرابریز کو دیکھیے. ہے کسی انسان کی طاقت کے یہ بنا سکے؟ آج تک سٹرابریز کارخانوں میں کیوں نہ بنی، آرٹیفیشلی بنا لیتے. وہ رقت، وہ لذت ہے، ذرا سا سخت ہاتھ لگاؤ تو انگور کے آنسو نکل آتے ہیں، اتنے پیار سے اللہ نے بنایا. مالٹے کو دیکھ لیجئے، اورنج میں اللہ نے کیا کیا، ایک ایک قطرے کو پیک کیا. اب ایک پھانک لیتے ہیں نا، اس پھانک کے اندر پھر پھانکے ہیں، ایک ایک ڈراپ کو پیک کرنے لگا کون ہے؟ کبھی سوچتے ہیں؟ کل ہم کسی جگہ گئے درس کے لیے، جب گئے تو آف کورس مغرب سے پہلے کا وقت تھا، اجالا تھا، حسب عادت بعد میں جب اینڈ پہ ہم نکلے مغرب کے بعد تو اندھیرا تھا. تو جب میرے ساتھ تھی ساتھی، میں نے کہا جب ہم اس گھر کے اندر داخل ہوئے تھے تو باہر اتنی روشنی تھی، یہ کیسے اندھیرا ہو گیا؟ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ چونکہ روز ہو رہا ہے، اٹس فائن، یہ آٹومیشن پہ چل رہا ہے. کون ہے اس کو آٹومیشن پہ کرنے والا؟ آپ کی میری تو گھڑی، سیل نہ ڈالو تو اس کے رک جائے وقت. اتنا کچھ کرنے والی ذات سے تم غافل کیسے رہ سکتے ہو؟ اور حقیقت ہے کہ جس کو کائنات پہ غور کرنا آ گیا اس کو دوسرے استادوں کی اتنی ضرورت نہیں رہتی، اندر کی آنکھ کھلتی ہے تو کائنات پہ غور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اور یہ اسی کی ذات ہے جو ہم سب کو یہ دے کر کیا کہتے ہیں, پھلوں کے پھل آنے کو گنو. یہ بہت پیارا, اس پہ ہم تفسیر میں کافی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں, لیکن صرف ہینٹ دے سکتی ہوں کہ جس طرح پھل کے بننے تک یا پھل لگنے تک مختلف مراحل ہیں نا, اسی طرح میری اور آپ کی زندگی سے لے کر آخرت کے مختلف مراحل ہیں. آج یہ مت دیکھو کہ ان حالات میں نیکی کر رہی ہوں, آج یہ مت دیکھو کہ کتنا مشکل اللہ کو حکم ماننا, وہ دن دیکھو جس دن تم اس محنتوں کا پھل پا رہے ہوگے اور ہم جنت میں ہوگے. امیجن تو کیجئے ایک دن آپ ہم سب جنت میں ہوں گے, از اٹ پاسبل؟ دیکھیے جب کسی بھی کام کی پلاننگ شروع ہوتی ہے نا, 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں اس میں, اور پھر ہم سوچے اچھا یہ ہوگا, خوف بھی بہت آتا ہے, پتہ نہیں بیچ میں کیا ہو جائے کیا ہو, پھر وہ کام ہو جاتا ہے. تو پھر جو آخری دن دل کی حالت ہوتی ہے, دل کرتا ہے پھوٹ پھوٹ کے روئے کہ اللہ ہم گناہ گاروں نے کوئی سوچا آپ نے کروا دیا, ہم نے کہا یہ ٹرپ ادھر جائیں گے, ادھر سے اس شہر میں اس ملک میں جا رہے ہو گیا, آپ کو ہم گناہ گاروں کی اتنی قدر ہے کہ ہماری بات کو آپ جھوٹا نہیں کرتے, ہر ایئر لائن ٹکٹ یوز ہو گیا, الحمدللہ ٹرپ اپنے اختتام پہ پہنچ گیا. تو جب وہ ہوا تو کیا ایک دن آپ اور میں جنت میں نہیں جائیں گے اور وہاں بیٹھ کے جا کے یاد کریں گے کیسے ہم اللہ کی کتاب پڑھتے تھے اور کیسے ہم کوشش کرتے تھے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ خواب سچ کر دے کہ ہم جنت میں جائیں. ہم جنت سے کم کسی چیز پہ اللہ سے راضی نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں جنت دے, پھر اس کے بعد جو اس کی خوشی ہے وہ اپنے حساب سے ہمیں دے دے. لیکن فرمایا وقت ان نفی ذالک لآیات لقوم یؤمنون, ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان کی نظر کمزور ہو تو یہ نشانیاں کوئی نہیں دکھتی. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقہم, اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا, یعنی پیدا سب کچھ اللہ کرتے ہیں اور لوگ جنوں کو اللہ کے شریک بناتے ہیں حالانکہ وہ ان کا خالق ہے, اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دی. سبحانہ, وہ پاک ہے اس سے. وتعالی عما یصفون, اور ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں, وہ تو آسمانوں اور زمین کو پہلی بار بنانے والا ہے. سوچیے آسمان کو اور زمین کو, پوری دنیا گھوم کے آپ دیکھ لیں آسمان ایک ہی جیسا, مٹی کا رنگ بھی آلموسٹ ایک ہی جیسا, کسی نے بڑی عمارتیں بنائی چھوٹی بنائی, کہیں نئی کہیں پرانی, کہیں صفائی کام زیادہ, لیکن زمین و آسمان پوری دنیا میں ایک ہے. ہم باہر جب اپنے ملکوں میں رہتے تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں باہر کا آسمان بھی کوئی سونے کا ہوگا, جب آپ آتے ہیں آپ کہتے ہیں ہائی یہ بھی ایسے ہی. مجھے اپنا یاد آ رہا ہے, ویسے تو ہم پاکستان سے چھوٹے موٹے سفر تو کرتے ہی تھے پہلے بھی عمرے پہ اور دبئی تک کے, لیکن جب میں فرسٹ ٹائم امریکہ آئی, اور امریکہ تو آپ کو پتا ہے ہم پاکستانی انڈین لوگوں کے ذہن میں کیا ہے, ماشاء اللہ ایسے لگتا ہے وہ جنت کا دروازہ ہے اور وہاں جائیں گے تو پتا نہیں کیا کچھ ہوگا. تو جب میں آئی تو مجھے لگا کہ ایسی تو ہے وہاں بھی, زمین بھی ایسی آسمان بھی ایسا, تو یہ سب ایک یونیفارمٹی میں کیسے آیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ رہ کر اچھے سے اچھے کام کرنے والا بنا دے. اسی لیے فرمایا اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں, اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے, یہ ہے اللہ تمہارا رب, کوئی ذات اس کے سوا نہیں, ہر چیز کا خالق. پھر کرو کیا, فعبدہ, اس کو ہائی لائٹ کر لیں, فعبدہ, بس اس کی بندگی کرو, تم بندے بن جاؤ. دیکھیے جس رب کا سب کچھ ہے آپ اس کے بندے بن جائیں تو سب کچھ کس کا ہو گیا, بولیے آپ کا ہو گیا. ایک مرد ہوتا ہے اتنی محنت سے کما کے کیریئر بناتا ہے, گھر لیتا ہے, کیا ڈگریاں لیتا ہے, پھر ایک عورت یا ایک لڑکی سے اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ شادی کے بعد سب کس کا ہو جاتا ہے, عورت کا ہو جاتا ہے نا. ایک مرد سے تعلق جڑا تو آپ اس کی دولت کی وارث ہوگی, گاڑی کی چابی آپ کے پاس, چیک بک میں آپ کا نام, ہر جگہ آپ مسز فلاں بن گئی. تو جب آپ اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں خالق اور مخلوق کا, یاد رکھیے تو اللہ بھی اپنی ساری چابیاں آپ کو دے دے گا, الا وہ چابیاں جو اس نے اپنے سوا کسی کو نہیں دینی. بڑا مان ہو جائے گا آپ کو اپنے رب پہ. آپ لوگوں پہ نہیں نظریں رکھیں گے, ہاں لوگ مدد کریں تو لیٹ وی کین ڈو دس, نیور. لوگوں پہ نظریں لگانے والے پیچھے رہ جاتے ہیں, اللہ پہ نظریں لگا کر لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیشہ اللہ پہ نظریں لگائیں, چھوٹا کام کریں زندگی میں یا بڑا, آپ کہہ دیں کہ حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی ناممکن چیزیں آپ کی زندگی میں لے آتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا कि वो जात जो सब कुछ करने वाली है और वो हर चीज का कफील है, निगाहें उसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है। बस ये है दुख की बात, वो हमें देख रहा है, आज हम उसको नहीं देख पा रहे। कितनी तड़प है हमारे दिल में रब को देखने की। वहु अल लतीफुल खबीर, वो निहायत बारीक बीन और बाखबर है। अब रब को तो नहीं देख सकते तो रब कुछ निशानियां दिखाता है, कैसे? कज्जाकुम बसाइरुम मिर रब्बिकुम फमन अबसर फली नफ्सिही वमन अमिय फअलैहा। देखो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की रोशनियां आ गई हैं। अब जो बीनाई से काम लेगा अपना ही भला करेगा और जो अंधा बनेगा खुद नुकसान उठाएगा। मैं तुम पर कोई पासबान नहीं हूं। इसी तरह हम अपनी आयात को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं और इसलिए करते हैं कि ये लोग कहें कि तुम कहीं से पढ़कर आए हो, और जो लोग इल्म रखते हैं इन पर हम हकीकत को रोशन कर देंगे। ए नबी, इस वही की पैरवी कीजिए। हाईलाइट कीजिएगा, नबी सल्लम को जब ये कहा जा रहा है कि आप इस वही की पैरवी करें तो मुझे और आपको किस चीज का फिर हुक्म होगा? इसी का हुक्म होगा ना। तो फरमाया, नबी आप इस वही की पैरवी कीजिए जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल हुई, क्योंकि इस एक रब के सिवा कोई और जात नहीं। और इन मुशरिकीन के पीछे ना पड़ो, अगर अल्लाह की मशीयत यानी उस अगर अल्लाह चाहता तो खुद ऐसा बंदोबस्त कर सकता था कि ये लोग शिर्क ना करते। तुमको हमने इन पर पासवान मुकर्रर नहीं किया और ना आप इन पर हवालेदार हो। और ऐ मुसलमानों, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं इनको गालियां ना दो। देखिए ये अदब चाहिए आज उम्मते मुस्लिमा को। दूसरे मजहब वालों की बेइज्जती ना करो, दूसरों के तरीकों पे ऐसी तनकीद ना करो कि वो जवाब में क्या करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लग जाएं। कज़ालिक ज़य्यन्ना लिकुल्ली उम्मतिन अमलहुम, इसी तरह तो हमने हर गिरोह के लिए इनके अमल को खुशनुमा बना दिया, फिर इन्हें अपने रब की तरफ पलट कर आना है। इस वक्त वो इनको बता देगा वो क्या अमल करते रहे। क्या दिन होगा वो क्यामत का जिस दिन अल्लाह हमें हमारे अमल दिखाएगा। वक्समु बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम, ये लोग कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं अगर कोई निशानी यानी मौजजा हमारे सामने आ जाए तो हम उस पर ईमान ले आएंगे। ए नबी इनसे कहो, निशानियां तो अल्लाह के इख्तियार में हैं, और तुम्हें कैसे समझाया जाए कि अगर निशानियां आ भी जाएं तो ये ईमान लाने वाले नहीं। क्यों? आखिरी आयत को देखिएगा, इसमें अल्लाह का एक कानून है। क्या? वनुकल्लिबु अफिदतहुम वअबसारहुम कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रतिन वनज़रुहुम फी तुग्यानिहिम यामहून। इसी तरह हम इनके दिलों और निगाहों को फेर रहे हैं जिस तरह ये पहली मर्तबा इस किताब पर ईमान नहीं लाए थे। हम इन्हें इनकी सरकशी में ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ये क्या बात है! देखिए, जब एक दफा इंसान नो कहता है ना अल्लाह को, तो अल्लाह तला उसके ऊपर मुहर लगा देता है। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं इसको हमेशा एक मिसाल से समझाती हूँ। एक वो सूरत है कि आपको कोई बुला रहा है, आपकी दोस्त हैं, बहुत प्यार करती हैं आपसे, अच्छे अच्छे काम करती हैं, वो आपको बुलाती हैं और आप आती कोई नहीं। कोई बुलाए और आप ना आए, मैं नहीं आ सकती, मैं बड़ी मजबूर, मैं फारिग नहीं हूं, मेरे पास बड़े काम है। एक दिन पता क्या होगा? वो आपको बुलाएंगी नहीं। जब अल्लाह हमें बुलाता है, सुबह शाम बुलाता है कि नहीं? हय अल सलार हय अल फला, और बंदा नहीं आता तो अल्लाह कहता है मैं एक दिन फिर आने ही नहीं देता। तौफीक सल्ब हो जाती है। बड़ी खुशकिस्मत है वो लोग के जो अल्लाह के बुलाने पे आ जाए। और अल्लाह खुद तो नहीं बुलाता ना। अब अल्लाह ने घर आकर हमारी बेल तो नहीं करनी ना, अल्लाह में किसी प्यारे के जरिए मैसेज भिजवाता है। इसलिए आजकल तो मैसेजिंग का इतना रिवाज है कि घर बैठे आपको लोग मैसेज दे के बुला सकते हैं। कभी आपकी कोई दोस्त या आपसे मोहब्बत करने वाला साथी आपको दीन की दावत दे तो इस आयत को याद कर ले, कहीं ये नो नो ही ना बन जाए, ठप्पा लग जाता है। और अल्लाह ताला हमारे दिलों पे ठप्पे लगने से बचाए। मक्का वालों के दिलों पे ठप्पे ही तो लगे हुए थे, तभी तो नबी सल्लम की सारी सिफात को जानने और मानने के बावजूद भी ना मान सके। क्या हम चाहते हैं कि हमारे दिल में आए? उनको पता था अल्लाह के नबी सच्चे हैं, लेकिन वो नहीं मानना सकते थे। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ, आखिरी रुकू को मिलके पढ़ते हैं। जरा सा आप सब भी शौर से पढ़ेंगे ताकि आप अलर्ट भी हो जाएं, और इसी दौरान अगर अपनी जगह उलट पुलट करना चाहें तो कर लें आयत नंबर 101 से। ऑनलाइन वाले भी पढ़ें ताकि आप लोग अगले पारे के लिए तैयार हो।
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء معبوده وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار هو اللطيف الخبير
चलिए अगला पारा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। चलिए आप पारा नंबर 8 की वो आयात जो इसके अंदर रूट उम्मत का आया है उसको देखेंगे। सबसे पहली आयत सूरत अल अराफ की आयत नंबर 34 है, वलिकुल्ली उम्मतिन अजल, और हर उम्मत के लिए या हर गिरोह के लिए एक वक्त मुकर्रर है, फिर जब कभी उनकी मौत का वक्त यानी या जब उनका वो वक्त आ जाता है, ला यस्ताखिरून अस्साअतम वला यस्तक़दिमून, तो ना एक घड़ी देर कर सकते हैं और ना जल्दी। मैं और आप इससे क्या सोचें, अगर अभी मेरी मौत का वक्त आ जाए तो क्या मुझे कुछ और करने की मोहलत मिलेगी? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने लिए अच्छे फैसले करने वाला बना दे। एक एक घड़ी को ये सोच कर इस्तेमाल करना है कि मैंने इसका सही इस्तेमाल किया कि नहीं किया। फिर अगली आयत सूरत अल अराफ की आयत नंबर 38 है, कालद खुलू फी उममिन, यहाँ दो दफा ये लफ्ज आया है। अल्लाह ताला फरमाएगा, जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं, तुम भी इनके साथ दाखिल हो जाओ जहन्नम में। जब एक जमात वहां जा घुसेगी, नोट कीजिएगा जरा, क्या मंजर होगा जहन्नम का कि पहले से कुछ लोग मौजूद थे, फिर एक नई जमात आई। कुल्लम दखलत उम्मतुन लानत उख्ताहा, फिर जब वहां एक और जमात दाखिल हो गई तो अपनी मजहबी बहन यानी पहले से मौजूद जो लोग उस जैसे थे वहां मौजूद, उन पर लानत करेगी, यहां तक कि जब सब इसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली के बारे में कहेगी, ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, इनको आतिश दोजख का दुगना अजाब दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम सबको दुगना दिया जाएगा मगर तुम जानते नहीं हो। इमेजिन कीजिए, बहुत गर्मी है, पहले ही जान निकल रही है गर्मी से और कुछ और घुसे। मैंने देखा अपना बच्चा भी माँ की गोद में घुसे तो माँ उसको कहती पीछे हो जाओ, मुझे तो खुद गर्मी लग रही है। भाई बहन के मोहब्बत के मामले कहीं खटारे में पड़ते लगते हैं जब बहुत गर्मी हो, तो जहन्नम इतनी शदीद होगी कि लोग उसमें जब दाखिल होते हुए दूसरों को देखेंगे तो वेलकम करने की बजाय उनको लानतान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को उससे बचा कर रखे। अल्लाह ताला हमें इन आयात पे गौर व फिक्र की भी तौफीक दे।